ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने जब स्वर्णिम संसार हेतु अपने ब्रह्मा वत्सों को निहारा तो उन्हें एक वत्स विशिष्ट प्रकाश से प्रकाशमान दिखा, जो कि इस ज्ञान यज्ञ के निमित्त अपना विशेष स्थान रखते हैं और भरपूर विशेषताओं से परिपूर्ण आत्म ज्योति की विशेष चमक से भरी अथक सेवाधारी के रूप में चिन्हित हैं। ऐसे यशस्वी भ्राता आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हमारे समक्ष पधारे हैं। हम सहृदय आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी ब्रह्मावत्स जब बाबा से मधुर मिलन मनाकर अपने लौकिक स्थान पर वापस जाते हैं तो आप सबके पास बाबा की मधुर याद प्यार वरदान और साथ में होती है मीठी मीठी टोली। तो जितने गुणों का भंडार बाबा ने भ्राता जी को दिया उतनी ही मीठी मीठी टोली भ्राता जी आप तक पहुंचाते हैं। सन 1972 में बाबा के दिल तख्त पर भ्राता जी ने अपना स्थान बनाया और बाबा को अपना सर्वस्व सन 1976 में समर्पण किया। विगत लगभग 4 दशकों में आपने देश विदेशों में वृहद सेवाएं की। वर्तमान में आप यूथ विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और आज हम सब आपके अमृत वचनों का श्रवण करेंगे। आज का विषय है निर्विघ्न जीवन, खुशनुमा जीवन। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। निर्विघ्न जीवन, खुशनुमा जीवन, प्यारे बाबा ने हम बच्चों के प्रति इशारा दिया है कि वर्तमान के अनुसार निर्विघ्न जीवन अनुभव करते चलो। वास्तव में इस संगम युग में निर्विघ्न जीवन अनुभव करना श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में छोटा बड़ा विघ्न आता है उस विघ्न के कारण हमारे मन में व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्पों का तूफान उठता है, जिससे आत्मा की ऊर्जा बहुत खर्च होती है। इसलिए बाबा ने ये इशारा हमें दिया है। वास्तव में विघ्न किसे कहते हैं? जो परमात्मा नई दुनिया का स्थापना का कार्य कर रहे हैं, विश्व नव निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जो विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां और रुकावटें, व्यवधान आदि आते हैं, जिससे यह कार्य में रुकावट अनुभव होती है, विघ्न के कारण क्या हैं? विघ्न के कारण हैं हमारा सूक्ष्म देहाभिमान विकारों के अंश जो आत्मा में बाकी हैं, कर्म बंधन, आपस की लेन देन और दुर्भावनाएं आदि कारणों से हमारे जीवन में विघ्न आने की संभावना होती है। इसलिए इन कारणों का जितना निवारण हम करते जाते हैं उतना निर्विघ्न जीवन, खुशनुमा जीवन हमें अनुभव होने लगता है। तो यह जो ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है इसको निर्विघ्न अनुभव करने के लिए कुछ एक युक्तियां जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। तो वो युक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली युक्ति है जब विघ्न आते हैं उस समय नित्य दिन योग के नए नए प्रयोग करते रहें। जब भी विघ्न हमारे जीवन में आते हैं उस समय हमें घबराना नहीं है, बड़ी धैर्यता से उसका सामना करना है, क्योंकि विघ्न एक परीक्षा है। उस परीक्षा में हमें पास होना ही है। इसलिए अमृत वेले जो हम बाबा से शक्तियां प्राप्त करते हैं उन शक्तियों को अष्ट शक्तियों के रूप में सारे दिन भर में हमें प्रयोग में लाने हैं। जब हम इन अष्ट शक्तियों का विघ्नों को पार करने के लिए यूज करते जाते हैं तो हम विघ्न जीत बनते जाते हैं, क्योंकि विघ्न हमारे किसी न किसी कमजोरी से ही आते हैं। हमारे कमजोरी से, औरों के कमजोरी से और वातावरण हमारा शक्तिशाली न होने से विघ्न आने की संभावना होती है। इसलिए समय प्रति समय योग के प्रयोग करते रहें, जिससे योग की अग्नि में विघ्न जो है समाप्त होते जाते हैं। दूसरी युक्ति है अमृत वेले रोज हमें मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं इस स्वमान के सिंहासन पर बैठना है। हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प विघ्नों को जीता है, विघ्नों को हराया है। इसलिए विघ्न हरता गणेश की हमारे कारण ही यादगार भक्ति मार्ग में चलती आ रही है। जैसे कीटनाशक दवाई के सामने कीटक नहीं टिकते हैं, वैसे विघ्न विनाशक आत्मा के सामने विघ्न नहीं टिक सकते हैं। बहने भी समझे, मैं असुर संहारिणी हूं। जिन असुर वृत्तियों से विघ्न आते हैं, उन असुरी वृत्तियों का मैंने हर कल्प संहार किया है। इस स्वमान में जब हम स्थित होते हैं तो आत्मा की सुसुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे आने वाला विघ्न पल भर में मिट जाता है। तीसरी युक्ति है, विघ्न विनाशक बनने के लिए सेवा के क्षेत्र में टकराव से सदा बचे रहें, क्योंकि जहां टकराव होता है वहां स्थिति का बिखराव होता है, और टकराव होने से जिससे टकराव होता है उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में निगेटिव संकल्प चलने लगते हैं, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, जिससे आत्मा खोखलेपन की महसूसता करने लगती है। इसलिए विघ्न विनाशक बनने के लिए सेवा के क्षेत्र में तीन साथी हमारे पास सदा रहने जरूरी हैं। वो तीन कौन से साथी हैं? धैर्य, शांति और स्नेह। जब इन दो तीनों साथियों को हम साथ में रखते हैं तो टकराव से सदा बचकर रहते हैं। हमेशा दीदी मनमोहिनी जी का एक मंत्र था, दीदी हमेशा कहती थी, मर मर झुक झुक सिख सिख। ये मंत्र अगर जीवन में धारण करते हैं तो हमेशा विघ्नजित बनकर रहते हैं। मुझे ही मरना है, मुझे ही झुकना है और मुझे ही अंत तक सीखना है। ये भावना हमारे मन में जब पनपती है तो विघ्न हमारे सामने टिक नहीं सकता है। इसलिए बड़े नम्रता से इस मंत्र को जीवन का अंग बनाएं और निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति करते चलें। चौथी युक्ति है, विघ्न विनाशक बनने के लिए किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में दुर्भावना न हो। क्योंकि किसी आत्मा के प्रति हमारे मन में दुर्भावना होती है, नफरत की भावना होती है, बदले की भावना होती है, तो उसके प्रति हमारे मन में निगेटिव संकल्पों का प्रवाह चलता ही रहता है। इसलिए उस आत्मा के आदि और अनादि और अंतिम स्वरूप को अगर हम देखते हैं, बजाय वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप को, तो उस आत्मा के प्रति हमारे मन में न चाहते हुए भी शुभ भावना पनपने लगती हैं। अगर हम स्वयं को बड़े समझते हैं तो बड़े व्यक्ति के दिल में हमेशा क्षमा भाव, रहम भाव और दातापन का भाव होता है। इसलिए किसी एक भी आत्मा के प्रति हमें दुर्भावना हमारे मन में नहीं रखनी है। यही संपूर्ण पवित्रता की निशानी भी है। संपूर्ण पवित्रता की निशानी है सभी आत्माओं के प्रति मन में सदा शुभ भावना पनपते रहना। तो इस श्रेष्ठ धारणा को हम जीवन में अपनाते चलें तो स्वतः ही निर्विघ्न स्थिति का अनुभव हम करते जाते हैं। पांचवी बात है, अगर हमारे जीवन में कभी विघ्न आते भी हैं तो विघ्न को कागज का शेर समझें। बाबा ने एक बार कहा था, जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो छोटी सी राई को भी पहाड़ के समान देखते हैं, और जो महीन बुद्धि वाले होते हैं वो बड़े ते बड़े समस्या को भी राई के समान या रुई के समान बहुत छोटा समझते हैं और उस विघ्न को पार करते हैं। जैसे हम हवाई जहाज में सफर करते हैं और जब ऊंची उड़ान हवाई जहाज की होती है तो खिड़की से अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें भी हमें बहुत छोटी लगती हैं, चलने वाली कारें भी हमें माचिस की डब्बी की तरह लगती हैं। तो ऐसे जब हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है तो बड़े बड़े विघ्न भी हमें कागज के शेर की तरह अनुभव होते हैं। जैसे कागज के टुकड़े को फूं करते ही वो उड़ने लगता है, ऐसे ऊंची स्थिति पर जब हम विराजमान होते हैं तो ऐसे विघ्न भी चुटकी में पार हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति की यादगार मधुबन में है, शांति के स्तंभ के रूप में, शक्ति के स्तंभ के रूप में, ज्ञान और पवित्रता के स्तंभ के रूप में, ऐसी हम बहुत ऊंची स्तंभ के समान स्थिति को अच्छा लडोल बनाएं तो विघ्न बहुत छोटी बात लगते हैं और विघ्नों को हम सहज पार करने लगते हैं। छठवीं युक्ति है, हमें हमेशा याद रखना है कि अपने इर्द गिर्द जो वायुमंडल होता है उस वायुमंडल को हमें निर्विघ्न बनाकर रखना है। हम सभी ब्रह्मा वसुओं ने संगम युग में निर्विघ्न बनने के लिए पुरुषार्थ किया है, उसकी यादगार भक्ति में मनाते हैं, यज्ञ रचकर और होम करते हुए। तो ये जो यादगार यज्ञ रचने की और होम करने की है ये हमारी ही है। तो जैसे कहीं अशुद्ध वातावरण होता है उस समय हम सुगंधित अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो वहां की दुर्गंध मिट जाती है। तो ऐसे हम स्वयं को आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती समझते हैं और मुझ चैतन्य अगरबत्ती से इस वायुमंडल में शांति, शक्ति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, ऐसा बहुत अनुभव करते हैं, तो वायुमंडल शुद्ध और शक्तिशाली बना रहता है। और ऐसे शक्तिशाली वायुमंडल में विघ्न प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता है, तो ऐसे ही जहां निर्विघ्न वायुमंडल हम बनाकर रखते हैं वहां विघ्न आ नहीं सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को भी पवित्र, शांत और शक्तिशाली बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए वायुमंडल पावरफुल बना रहे उसके लिए सारे दिन भर में पावरफुल स्थिति का अनुभव हम करते रहें, और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं इस स्वमान में रहेंगे तो हमारे सामने विघ्न आ नहीं सकता है। महारथी और प्यादे में क्या अंतर है? विघ्न महारथी के पास भी आता है, विघ्न प्यादे के पास भी आता है, लेकिन प्यादे के पास जब विघ्न आता है तो वो अलबेला होता है, तो प्यादे के पास विघ्न आता है, नुकसान भी पहुंचाता है, उसके बाद वो अलर्ट होता है कि अभी मुझे इस विघ्न को हटाना जरूरी है। लेकिन जो महारथी होते हैं वो पहले से ही देखते हैं कि विघ्न आने वाला है। जैसे मौसम विभाग को पता चलता है तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, ऐसे महारथी की लाइन बुद्धि की बहुत क्लियर होती है और क्लीन होती है, तो उसको पहले से ही अंदाज आता है कि अभी विघ्न आने की संभावना है। उस समय वो अलर्ट होता है और विघ्न आते ही उसको भगा देता है। ऐसे वो हमेशा विघ्न जीत बनकर रहता है। तो इसलिए विघ्न न आए, अगर आते भी हैं तो उसको फट से भगा दें, और उससे जो नुकसान हमें पहुंचता है उस नुकसान से हम सदा सेफ रखें। सातवीं युक्ति है, निर्विघ्न औरों को रखने के लिए सकाश के द्वारा योगदान देते रहें। हम देखते हैं किसी न किसी व्यक्ति के पास कोई विघ्न आता है, वो उस विघ्न में हलचल में आता है, उस समय हमें सकाश के द्वारा उस व्यक्ति को, उस आत्मा को शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति का दान देना है, जिससे वो भी आत्मा निर्विघ्न बनकर सदा आगे बढ़ती रहें। क्योंकि जितनी हम ये सेवा करते हैं उतनी दुआएं हमें मिलती रहती हैं, और कहते हैं जहां दुआएं होती हैं वहां विघ्न नहीं होते हैं। जब डॉक्टर को मरीज मिलता है और डॉक्टर मरीज को ट्रीटमेंट देता है तो ट्रीटमेंट देते समय कहता है आई ट्रीट ही क्यूर, मैं आपको ट्रीटमेंट देता हूं लेकिन ऊपर वाला आपको ठीक करेगा। तो ऐसे जब हमारे पास दुआओं का स्टॉक होता है तो हम परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर सदा अनुभव करते हैं और विघ्न जीत बनकर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। आठवीं युक्ति है निर्विघ्न बनकर रहने के लिए संगठन को शक्तिशाली बनाएं और संगठन का पूरा लाभ लेते रहें। माया वार कैसे करती हैं? सबसे पहले हमें संगठन से अलग करती हैं, अकेलेपन की महसूसता होती है। संगठन मजबूत कैसे होता है और संगठन कमजोर कब होता है ये बात समझने की है। बाबा ने ये जो ब्राह्मणों का संगठन बनाया है ये स्नेह के धागे से मजबूत बनाया है। यह रूहानी गुलाबों का गुलदस्ता बाबा स्नेह के धागे से बांधते हैं। तो जितना हमारा प्यार सर्व के प्रति बढ़ता है उतना ये संगठन मजबूत होता है। और जब हम किसी की कमी देखते हैं तो उसके प्रति हमारे दिल में प्यार कम होता है। और जब हम किसी की विशेषता देखते हैं तो उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ने लगता है। तो ऐसे सभी आत्माओं को विशेषता को देखते चलें, संगठन को शक्तिशाली बनाते रहें और उस शक्तिशाली संगठन का हम स्वयं लाभ लेते रहें तो स्वयं को निर्विघ्न अनुभव करते रहते हैं। नवी युक्ति है जब भी विघ्न आते हैं उन विघ्नों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। विघ्न आने से हमें घबराना नहीं है। कहते हैं रास्ते पर जब पड़ा हुआ जो पत्थर होता है उसको जितनी हाथोड़े लगते हैं उतना पत्थर मूर्ति बनता है और मंदिर में उसको रखा जाता है जिसकी पूजा होती है। तो ऐसे हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को जितने विघ्नों के हाथोड़े लगते हैं जितने विघ्नों के हाथोड़े लगते जाते हैं उतना हम पूजनीय मूर्ति बनते जाते हैं। और जिससे हमारी द्वापर युग से मंदिरों में पूजा होती रहती है। इसलिए विघ्नों को हम परीक्षा समझें। जो व्यक्ति विघ्न क्रिएट करता है वो हमें सहनशीलता का मेडल देने का पूरा प्रयास करता है, उस मेडल को हमें लेना ही है। कहते हैं जो सहन करता है वो शहनशाह बनता है। तो सहना आत्मा का सच्चा गहना है। इसलिए विघ्नों के हाथोड़े मुझे न लगे ऐसी कमजोर भावना हमारे दिल में न हो, लेकिन जितनी भी परीक्षा हमारे सामने आएगी विघ्न हमारे सामने आएंगे। बाप का साथ हमें मिला है, सर्वशक्तिवान बाप का साथ हमें मिला है, तो हमारे सामने विघ्न ठहर नहीं सकते। कहते हैं जितना जो रुस्तम बनता है उतनी माया भी रुस्तम बनकर आती है, तो इसलिए हमें कमजोर नहीं बनना है लेकिन मनोबल को शक्तिशाली बनाकर रखना है और माया दुश्मन को जीत कर ही रहना है, उसको ही हार हमें खिलाना है। यह दृढ़ संकल्प हमारे मन में सदा रहे। दसवीं युक्ति है, बाबा ने कहा है व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, क्योंकि हम सभी यहाँ आए हैं शरीर रूपी मोबाइल की आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो संकल्प के माध्यम से मन मना भाव के मंत्र से ये बैटरी चार्ज होती है, लेकिन जितने व्यर्थ संकल्प हमारे मन में चलते हैं उससे बहुत ऊर्जा लीकेज होती है। तो बाबा वतन से देखते हैं कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, इसका कारण है व्यर्थ का लीकेज होना। तो व्यर्थ को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसकी चार युक्तियां हैं। उन युक्तियों को अगर हम अपनाते चलते हैं तो निश्चित हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। पहली युक्ति, जब हम किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं उसके शरीर को देखते हैं तो हमारे मन में यूं ही चार पांच संकल्प चल पड़ते हैं, इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराइयां हैं, जिसका कोई लेना देना होता नहीं है। तो शरीर देखने के बजाय हमें फुल स्टॉप उसके भ्रुकुटी में और अपने भ्रुकुटी में लगाना है। जब आत्मा की बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान हैं, तो व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगता है। दूसरी युक्ति है, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए ड्रामा की बिंदी लगाना सीखें, क्योंकि इस बेहद के ड्रामा में कोई अच्छा लगने वाला या ना अच्छा लगने वाला सीन जब सामने आता है तो न चाहते भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है जिससे हमें बड़ा भारी नुकसान पहुंचता है। तो यह ड्रामा केवल रिपीटेशन है, कलब कलब ये सीन मेरे सामने से पास हो चुका है ऐसा सोचते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं तो व्यर्थ संकल्पों को भी फुल स्टॉप लग जाता है, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का होता जाता है। तीसरी युक्ति, जैसे पानी बहता है लेकिन बहने वाला पानी अगर नुकसान करता है तो उसके प्रवाह को हम मोड़ देते हैं, उसके प्रवाह की दिशा बदल देते हैं। ऐसे हमारे मन में संकल्पों का प्रवाह चलना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव चलता है तो समर्थ की ओर प्रवाह चलने के लिए हमें मनन चिंतन को बढ़ाना जरूरी है। ज्ञान का भोजन आत्मा को खिलाते रहें, मनन चिंतन को बढ़ाते रहें, तो हमारे मन में समर्थ संकल्पों का प्रवाह बढ़ता जाएगा बहता जाएगा और व्यर्थ से हमें मुक्ति मिलती जाएगी। चौथी युक्ति है, आत्मा रूपी माँ के मन और बुद्धि ये दोनों बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों ने द्वापार में माया के संग में आकर शैतानी की है और हमारे पास जो भी खजाने हैं सारे लुटा दिए हैं। अभी इन्हीं दोनों बच्चों को परमात्मा जो सागर है खजानों के उनके संग में रखना है और खोए हुए खजाने पुनः हमें प्राप्त करना है। तो इन दोनों बच्चों को नियंत्रण में और अनुशासन में हम रखना चाहते हैं, हमेशा व्यस्त रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा बताते हैं, याद का चाट रखते चलो। जब हम हर घंटे का सारे दिन भर का चाट रखते हैं तो मन बुद्धि हमारे डिसिप्लिन में रहती हैं, व्यर्थ समाप्त होने लगता है और हमारी कमाई बढ़ने लगती है। इसलिए कहते हैं चाट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता जाता है। इसलिए इस युक्ति को हमें जरूर अपनाना है। चाहे चाट भले हमारा अच्छा न हो लेकिन ये आदत धीरे धीरे जब हमारी पक्की होती जाती है तो मन बुद्धि हमारे संयम में रहते हैं और हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है, विघ्न जीत मुझे स्वयं को रखना है और औरों को भी विघ्न जीत रखना है। स्वयं विघ्न जीत रहना अच्छी बात है लेकिन औरों को विघ्न जीत, वायुमंडल को विघ्न जीत रखना यह भी बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए जितना हम इस सेवा में हाथ बटाते जाते हैं उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। इसलिए हमें योग की स्थिति पावरफुल बनाना है और एक स्लोगन सदा याद रखना है, करो तपस्या मिटे समस्या। आज तक यज्ञ में जब भी परिस्थितियां आई हैं, समस्याएं आई हैं, विघ्न आए हैं, बाबा ने दादी जी ने इन विघ्नों को हटाने के लिए तपस्या का ही प्रयोग किया है और उस तपस्या से ही आज तक यह विघ्न जीत हमारा यज्ञ चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करेंगे क्योंकि बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो सभी अनुभव करना चाहेंगे हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी भी बीच में कोई भी उठेंगे नहीं और ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम सभी अमृत वेले योगाभ्यास के लिए यहाँ बैठे हैं और मानसिक तैयारी करके पावरफुल योगाभ्यास की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी मकान मालिक ज्योति बिंदु आत्मा आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ दमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मुझ चमकते हुए ज्योति बिंदु से दिव्यता की चमक दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। मुझ चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओ दिव्य और भव्य आभा मंडल लाइट का क्राउन अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता बाप ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। वहारे मैं वहां मेरा भाग्य सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो स्वप्न स्वयं के सत्य स्वरूप को असली स्वरूप को दिव्य स्वरूप को बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ। स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु शांति की लहरें शांति के प्रकंपन इस शांति वन में चारों ओर फैल रहे हैं। परम
शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र को छोड़कर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। और फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया, चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मुझ फरिश्ते के समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूँ। बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। स्नेह सागर में डूब चुका हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु स्वरूप आत्मा,
निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी और निराकारी दुनिया है यह, चारों ओर सुनहरी लाल हिला, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति शांति है। कितना सुंदर है यह मेरा स्वीट साइलेंस हो, मेरा रेस्ट हाउस, ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण दाता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मेज आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ, बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम, बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है, बाबा मेरे संसार बन चुके हैं, मेरे दिल और दिमाग पर मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा छाए हुए हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों के प्रखर किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। ज्ञान सूर्य से शक्तिशाली किरणें, बेहद शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पांव भस्म हो रहे हैं, पल भर में मिटते जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच
मेरे जीवन के बेहद सुख के पल हैं यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बाबा की कंपनी को मैं आत्मा एंजॉय कर रही हूँ। बाबा के शक्तियों का रंग मुझ आत्मा पर लग रहा है। उनके ही संग में, उनके ही शक्तियों के रंग में मैं आत्मा रंगती जा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस साकारी शरीर में ध्रुकुटी के अकाल तख्त पर विघ्न विनाश के सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली विघ्न विनाशक आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं और इस वायुमंडल को भी निर्विघ्न शक्तिशाली बना रही हैं। मैं हूँ देह से न्यारा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक चमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में ही है। ज्योति बिंदु के रूप में ही है।